نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ان شاء الله تعالى آج ہم سورة البقرة آیت نمبر 26 سے 30 تک دیکھیں گے. ہم نے پچھلی آیات میں ایک چیلنج کے بارے میں بات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو کوئی سورت بنا کے لے آؤ اور تم اپنے مددگاروں کو بھی لے آؤ. اگر تم اتنے ہی سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلام ہے تو پھر تم بھی لے آؤ. اگر تم سمجھتے ہو نا انسانی کلام ہے تو وہ تو اکیلے ہیں نا، تم اپنے ساتھ اور جتنے کو بھی ملانا چاہو ملا لو، اور ان کی مدد کے ساتھ تم کوئی ایسا ہی کلام، پورا نہ صحیح، ایک سورہ کی مثل ہی بنا کے لے آؤ. تو اب ان سے تو بنایا نہیں جا سکتا تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ جب انسان کو کوئی چیز کا مقابلہ نہیں ہو رہا اس سے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے اوپر اعتراض کرنے لگتا ہے، پھر اس کے اندر سے شوشے نکالنے لگتا ہے، نہیں جی اس میں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ تو ویسے ہے. یہی کام ان لوگوں نے کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے دے کے چیزیں سمجھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی کتنی سوچ سمجھ عقل کتنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے مثال دے کے کیا ہوتا ہے، چیز سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل، مکھی سے بھی مثالیں دی ہیں، مکڑی کی مثالیں دی ہیں، شہد کی مکھی کی مثالیں دی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جنت کی چیزوں کی مثال دنیا کی چیزوں سے دی ہوئی ہے. اب جنت کی چیزیں دنیا کی چیزوں جیسی تو نہیں ہیں، لیکن اب جب انار کی بات آئی، کیلے کی بات آئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو یہ یہاں کے پھل ہیں، لیکن صرف اس لیے تاکہ انسان کسی چیز کو سمجھ سکے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مثالیں دیں تو انہوں نے فوراً اعتراض کرنے شروع کر دی، لو یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں. یہ ہم پڑھنے لگے آپ، ٹھیک ہے. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی نہیں حیا فرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. یہ اللہ تعالی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیوں اللہ نے ایسی مثالیں دی. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں ہے مثالیں دینے میں، کہ چاہے باؤدا کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی ہو، اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ حیا، یہاں پہ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتا، اس سے نہیں جھجکتا، اس سے نہیں شرماتا. اس کا مطلب ہے کیا اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں حیا کرتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ بہت حیا والا اور بہت کریم ہے. اس کو حیا آتی ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کیسے اس کو خالی ہاتھ لوٹائے. یہ حدیث میں باقاعدہ آتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کئی چیزوں سے، اور حیا بڑی اچھی چیز ہے، مگر جہاں پہ حق بات کہنی ہو نا وہاں پہ انسان حیا شروع کر دے. مثلاً آپ کو کوئی برا کام دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، مجھے تو شرم آ گئی، میں کس طرح سے کہوں. وہ شرم نہیں ہے، وہ حیا نہیں ہے، وہ بزدلی ہے. ٹھیک ہے، تو حق بات کہنے میں حیا نہیں کرنی، یا حق بات کہنے میں اس وقت ہم شرمانا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ شرم کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں شرم آنی چاہیے. شرم سے وہ نہیں ہے کہ شائع ہونا، کہ جیسے کوئی بچہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، جی بڑا شرمیلا ہے، وہ والی بات نہیں. حیا ڈفرنٹ چیز ہے. تو جہاں پہ حیا ہونی چاہیے کہ کسی ساتھ بد کلامی کریں، کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کے اوپر کوئی بات کر دیں، اس میں حیا آنی چاہیے. کسی کو تڑ سے جواب دے دیں، نان کرٹیس رویے اختیار کریں، ان میں حیا ہونی چاہیے کہ انسان حیا کرے اور نہ بولے اس طرح کی بات، لیکن ان میں ہمیں حیا نہیں آتی. لیکن جب ہم حق کو دیکھیں और फिर खामोश रहे, तो फिर इसके अंदर हम कहते हैं हमें बड़ी हया आती है, क्या करें, इसलिए नहीं हम बोल सके। तो ये मौका नहीं होता हया का। तो कोई मौका होता है जिसके अंदर हया अच्छी बात है, लेकिन कोई मौका जहां पे हक कहना है वहां पे हया नहीं करना, यहाँ पे शर्माते ही रहे बोलने, सारा वक्त आपके सामने कुछ बुरा होता रहे और आप शर्मा रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या कहें, नहीं हमारी कौन सी किसी ने सुननी है। भाई ये बात कोई एक्सक्यूज नहीं, हमारी कौन सी किसी ने सुननी है, आप बोले तो सही, ताकि अल्लाह के हाँ तो आपकी तरफ से एक हुज्जत कायम हो जाए कि इसने तो बोला था, इसने तो कहा था। वहां पे हया करना बुराई है, वहां पे हया करना बुजदिली है, ठीक है। तो अल्लाह ताला नहीं हया करता कि वो मिसाल बयान करे किसी मच्छर की, ठीक है। क्यों ये क्यों कहा गया कि किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे ऊपर की किसी चीज की बयान करे? इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा है हमें समझाने के लिए बातें, उसने अपने इल्म के उसके ऊपर नहीं, यानी अपने इल्म के मुताबिक से बातें नहीं की हैं, बल्कि हमारे लेवल पे बात की है। और हमें बातें किस तरह समझ आती हैं, मिसालों से। मसलन आपने किसी बच्चे को बात समझानी है तो आप बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करना शुरू कर देते, आप उस बच्चे के लेवल पे बात करते कि इसको समझ आ जाए। इस तरह बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, वो कितने बड़े नॉलेज वाले स्कॉलर्स होते हैं। अब कोई स्पीकर अच्छा तब समझा जाता है जबकि वो अपने ऑडियंस के लेवल पे आके बात करें, ऐसा नहीं कि वो अपने इल्म के मुताबिक बड़ी बड़ी बातें करता रहे, उनके सर पे से ही गुजर जाए बात, उनको समझ ही ना आई बेचारों को क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो ये कोट कर रहा है, वो उसको बस ये है कि मैं अपनी धाक बिठाऊं। तो अच्छा स्पीकर वो होता है जो अपने ऑडियंस के लेवल पे जाके उनकी समझ के मुताबिक बात करे कि इनको मेरी बात समझ आ जाए, चाहे उसमें मिसालें देनी पड़े, चाहे उसमें किस तरह से करना पड़े, वो उसको इस तरह से करके बयान करता है, उसको कहा जाता है अच्छा स्पीकर, ठीक है। और बाज देखें, आप लोग भी देखते होंगे, बाज इतना मुश्किल बोलते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आते, और उठ के गए तो क्या समझा, कुछ भी नहीं समझ आया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा है किस लिए, ताकि इंसानों को हिदायत दे, इंसानों को रास्ता बताए। अल्लाह ने ये नहीं हमें दिखाना कि मेरा इल्म कितना है, मैंने तुम्हें तौर पर धाक बिठानी, बल्कि बेशक इसके अंदर अल्लाह ताला के इल्म की का पता चलता है कि अल्लाह ताला का कैसा इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लेवल की बात की है ताकि उस तरह से हमें बातें समझ में आए। तो ये एक मिसाल कुराने पाक में मकड़ी की भी आई, मक्खी की भी आई, जब उन्होंने इस चीजों के ऊपर मजाक करना शुरू कर दिया कि ये कैसी अल्लाह की किताब है, इनकी क्या जरूरत है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हक को बयान करने में अल्लाह नहीं शर्माता। इसका मतलब हमें भी क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला की इस सुन्नत से क्या हमें सबक सीखना चाहिए कि जब हक बात हो तो हमने शर्माना नहीं है, ठीक है। जब कोई ऐसी बात करनी हो जो वाकई सच्ची बात है, जो सही बात है, तो उसमें झिझकना नहीं है, ठीक है। और ये उनको ये था कि ये छोटी सी मखलूक की बातें क्या हो, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चाहे वो कोई मच्छर की बात हो, फमा फौकहा, या उससे ऊपर की किसी चीज की, मच्छर भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने अगर उसकी मिसाल दे दी तो कोई ऐसी नहीं है बात के ये कोई इतनी छोटी चीज की मिसाल उसकी तो ये शान के खिलाफ है, नहीं, छोटी मिसालें भी अल्लाह ताला दे सकता है, क्योंकि हमें समझाना है ना, बात मकसद देखे ना क्या है, हमें समझाना है। तो मच्छर वैसे भी अल्लाह ताला की कोई हकीर मखलूक नहीं, आप देखें ये मच्छर ही है जिसे नमरूद की मौत हुई आते हुई थी, ये मच्छर ही है जिसे मलेरिया होता है, डेंगी होता है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां पैदा होती। तो कोई भी अल्लाह की मखलूक हकीर नहीं है, बल्कि कुराने पाक में कहा गया कि तुम सारे जमा होके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, मक्खी तुम्हारे से कुछ छीन के तुम्हारे बुतों से कुछ ले जाए तो तुम्हारे बुत उसको वापस नहीं ला सकते, यानी मक्खी के आगे भी तुम आजिज हो जाते हो, मक्खी को मारना चाहें देखें वो आपको कैसे डॉज करती है। तो अल्लाह ताला की ये मखलूकात हैं, मकड़ी देखें, इसकी भी मिसाल अल्लाह ने दी है।
तो इसमें इस चीज को सोचना कि क्यों ऐसी मिसालें दी हैं, क्यों ये कहा गया है, ये एतराजात करना ये दुरुस्त नहीं है। और आगे रवैये भी आएंगे इंशाल्लाह, हम देखते हैं। पहले आप ये देखें कि फमा फौकहा का क्या मतलब है, जो इससे ऊपर है। एक तो लिटरल मीनिंग ले ले, जो मच्छर से ऊपर है। मच्छर के ऊपर क्या है, आज साइंस हमें बताती है कि मच्छर के ऊपर भी, ऑन टॉप ऑफ इट भी, एक मखलूक रहती है। मच्छर की जूं समझ ले, मच्छर के ऊपर भी एक कितनी टाइनी नो मखलूक होगी। मच्छर खुद इतना, मतलब एक मामूली सा, एक छोटा सा, बिल्कुल कितना छोटा, बल्कि कभी पता भी नहीं चलता मच्छर का, ये किधर घूम रहा है। उनकी आवाजों से, जू जू से पता चलता है मच्छर है। और मारना चाहे तो कितना मुश्किल होता है, कितना छोटा है वो एक कीड़ा, और उसके ऊपर एक मखलूक होना। तो अल्लाह ताला उससे भी नहीं शर्माता कि उसके ऊपर कोई मखलूक है, उसकी वो मिसाल दे दे। हदीस में भी आता है ना कि अगर दुनिया की कदर अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के भी पार के बराबर भी होती। मच्छर वो पार देखो, सोचो कितना छोटा होगा, मच्छर इतना छोटा उसका पार, तो इतनी सी भी अगर अल्लाह के नजदीक वैल्यू होती इस दुनिया की, तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। लेकिन चूंकि अल्लाह के यहाँ इतनी भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ काफिरों को भी। फिर दूसरी मतलब इसका क्या, फौकाहा का यानी जो इससे ऊपर है, यानी इससे ऊपर चीजें, मच्छर से ऊपर चीजें क्या, मैंने आपको बताया मक्खी भी है, मच्छर से ऊपर मकड़ी भी है, तो और भी हैं जो कीड़े वगैरह हों और परिंदे हैं, उनकी मिसाल देना। ये कोई ऐसी अल्लाह ताला के नजदीक नहीं है बात के जिसमें वो कोई हया करें। और फिर इससे ये भी फौकहा से मतलब है कि जो जो इससे भी आगे हो, यानी मच्छर तो क्या, जो मच्छर से भी ज्यादा हकीर या छोटी चीज हो, उससे भी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट चीज हो, उसकी भी मिसाल देने से अल्लाह नहीं शर्माता। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं कि जब ऐसी मिसालें दी जाती हैं तो लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं, वो यहाँ पे बताए गए। दो रिएक्शंस बताए गए, एक पक्के ईमान वालों का रिएक्शन क्या होता है, ये कोई ऐसी आयत आ जाए जिसको कोई लोग एतराज कर रहे हैं, तो ईमान वाले कैसे रिएक्ट करते हैं। वो एतराज कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, ये क्या मिसाल दे दी। ईमान वालों का रिएक्शन क्या है, और दूसरी तरफ जो इसको नहीं मानते, जो काफिर हैं, उनका रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शंस देखते हैं। फ अम्मा और व अम्मा के साथ दो रिएक्शंस आए हैं। फ अम्मल्लज़ीन आमनू, तो रहे वो लोग जो ईमान लाए हैं, तो क्या उनका, फयालमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, तो वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं, क्या इल्म रखते हैं, अन्नहुल हक, के बेशक ये हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। हक का माना क्या होता है, हम हक बात तो कहते रहते हैं, हक का माना होता है सच्ची बात, और नंबर टू हक का माना होता है पर्पसफुल, जो बामकसद हो उसको कहते हैं हक क्या ये। और तीसरा वो भी हक होता है जो हम कहते हैं ये उसका हक है, ये फलां का हक है, ये अल्लाह का हक है, ये भी हक होता है, राइट जो होता है किसी का। तो यानी ये सच्ची बात है, मेरे रब्बीहिम उनके रब की तरफ से, जब वो इन मिसालों को पढ़ते हैं ना, तो उनका रवैया क्या होता है, वो भी काफरों की बातों में आगे ये नहीं कहना चाहते, हाँ वाकई पता नहीं अल्लाह ताला ने क्यों, अच्छा अब मैं पूछ के आऊंगी किसी से, देखो ये तो वैसे सही नहीं है, और बस उनके पीछे ही लग जाते हैं। ऐसे हैं ना हमारे मुसलमानों में, भाई सुनी किसी से बात, कहीं पढ़ ली, उल्टे सीधे आजकल फलसफे तो बहुत चलते हैं ना, ये नेट पे आप देखेंगे बहुत कुछ फजूल चीजें लिखी होती हैं। पहले तो बात ये कि उनको ना पढ़ने की जरूरत है, ना उनको खोलने की जरूरत है, चलो देखूं तो सही ये क्या कह रहा है। क्या जरूरत है हमें ऐसी चीजों की, जो गुमराह कुन चीजें हैं उनको खोलें हम। फिर जब उनके एतराजात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद खुद भी जहन में शकुक व शुबात पैदा हो जाते हैं, अच्छा हाँ वाकई हमारा दीन ऐसे क्यों कहता है, वाकई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी क्यों की थी जब वो इतनी छोटी थी, हाँ वाकई फिर लौंडियां क्यों रखते थे मुसलमान, ये तो बड़ी अजीब बात है, फिर वाकई ऐसा क्यों था, फिर कहीं ना कहीं से खुद भी कोई वसवास लेके तो बैठे रहते हैं। हालांकि बताया गया जो ईमान वाला होता है ना, वो जब भी कोई चीज दीन की सुनता है, पढ़ता है, तो वो क्या कहता है, अन्नहुल हक को मेर रब्बी, कि वो हक है उनके रब की तरफ से। ये किसकी तरफ से? ये अल्लाह की तरफ से, और ये हक है और वो इसको जानते हैं। यहां पे ये नहीं आया, देखें नोट करें इस बात को, कि हमें सारी समझ आ गई है, हमें पता है। वो क्या कहते हैं, हमें बस ये पता है कि ये हक है और ये हमारे रब की तरफ से है, बस। हमें समझ आया है या नहीं आया, इससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हक है। और किसकी तरफ से? मेरे रब्बी है, उनके रब की तरफ से। इसका मतलब है कि वो इसको ऐसे नहीं लेते जैसे कि हम जैसे मसलन है, बच्चे माँ बाप को कभी कह देते, ये आपने कैसी बात की है, ये तो बिल्कुल आप उल्टी बातें करती हैं ना, आपने बिल्कुल समझ की बात नहीं की, ऐसे नहीं। या स्टूडेंट टीचर को कह दे कि ये क्या बात हुई, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं। मेरे रब भी है, उनको पता है कि ये बात है किसकी, हमारे रब की है। रब का मतलब समझ आ गया? दो दफा मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, अपनी बताने की जरूरत होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो फिर उसको याद कर लें। कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, वो बार बार आएंगी, उनमें एक रब का लफ्ज भी है, तो रब की तरफ से है। और जब उसको रब मान लिया तो हम क्या है, गुलाम है उसके। तो गुलाम अपने आका की बात कैसे सुनता है? ऐसे सुनता है कि बेतवज्जुही से और कोई रिस्पेक्ट ना हो? नहीं, बहुत तवज्जो से, मोहब्बत से। ये वो वाला गुलाम है जो शदीद मोहब्बत भी करता है, तो वो कैसे सुनेगा? वो गुलाम है, वो ऐसे सुनेगा, ये मेरे रब का कलाम है। जैसे हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल के बेटे हैं, लेकिन जब ईमान लाए हैं उसके बाद कुरान पाक जब पढ़ते थे तो रोते थे और कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। कितनी इस कलाम की वैल्यू उनके दिल में थी, ये मेरे रब का कलाम है, वो ये सोच के पढ़ते थे। ऐसे ही किसी की बुक नहीं है जैसे कि हम शेल्फ से और बुक्स उठा लें तो एक कुरान भी उठा लिया तो अच्छा चलो पढ़ लिया, हाँ ये इसमें क्यों बात है, वो ऐसे क्यों है, ये नहीं है, ये मेरे रब भी है। अब आप भी कुरान पढ़ने के लिए आगे जा रहे हैं, ये आपने सफर शुरू किया है, इसमें कई चीजें आएंगी, शायद आपको समझ में ना आए। वैसे तो आपको पता है कुराने पाक में सूरह अनकबूत में आता है कि मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, अल्लाह ने अपने समझने के लिए थोड़ी बयान किया, लोगों के लिए बयान करते हैं, लिन्नास, और इनको अकल वाले ही समझते हैं, अकल वाले इनको समझते हैं। तो जो हमारे असलाफ थे ना, सलफ सालेहीन थे, जब कुरान की किसी मिसाल को सुनते थे और समझ नहीं आती थी ना तो रोना शुरू कर देते थे, क्यों कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन मिसालों को सिर्फ इल्म वाले समझ सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर इल्म नहीं है, उनको इल्म वाले समझ सकते हैं। वहां पे आयत नहीं है, मैंने अकल वाले कहा, नहीं इल्म वाले लिखे हैं, आयत नंबर 43 सूरह अनकबूत, कि इल्म वाले समझ सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कोई इल्म नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही, उनको रोना आता था। तो एक तो ये बात है, उसे ये कि हो सकता है कुरान पाक में ऐसे अहकामात आए जो आपके दिल को थोड़ा तंग कर दे, जो आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, जो हो सकता है आपकी समझ में ना आए कि इसकी हिकमत क्या है। तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए? शुरू में ही बता दिया गया क्या रिएक्शन होना चाहिए, कि ये हक है मेरे रब की तरफ से, बस जो भी है ये सच है, यही ठीक है, यही सही है, यही सीधा रास्ता है, ये हक की हक है, मेरी अकल को छोड़ो, मेरी अकल क्या चीज है, और ये मेरे रब की तरफ से है, ऐसे ही किसी बंदे की बात नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि कुछ और भी लोग हैं जिनके कुछ और रिएक्शंस होते हैं, अम्मल्लदीन कफरू, तो जो लोग रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो उनका रिएक्शन क्या होता है हक को देख के? कलाम एक ही है, बातें एक ही हैं, आयात एक है, सेम है, वो क्या कहते हैं, फयकूलूना, तो वो कहते हैं माजा अराद अल्लाह बिहादा मसला, अल्लाह ने ये क्या इरादा किया इस मिसाल से। अच्छा वैसे अगर आप देखें तो मादा अराद अल्लाह बिहाज़ा मसला, ये क्वेश्चन के तौर पे भी हो सकता है कि अच्छा ये मिसाल समझ नहीं आई, इसका इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने क्या कहना चाहा इसमें। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछ रहे होते, उनका सवाल कैसा होता है, एतराज के साथ। आज आप सवालों की बड़ी बात देखेंगे, आगे भी एक सवाल आ रहा है 30 में, जो फरिश्तों ने भी किया, उससे आगे भी इबलीस ने भी सवाल किया था अल्लाह ताला से। तो सवाल करने में हर्ज नहीं होता, लेकिन असल बात क्या होती है, सवाल किस तरह से किया जा रहा है, हकारत के साथ, एतराज के साथ, अपने अंदर तकब्बुर और बड़ाई के साथ, या समझने के लिए। ये सब असल सवाल बुरा नहीं होता, असल इंसान का रवैया बुरा होता है। तो उनको देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कंडेम किया कि देखो इनका किया, ये नहीं है बात कि अल्लाह ताला सवाल करने से रोक रहा है, बल्कि बात क्या है कि देखो उनके रवैये दुरुस्त नहीं, कि वो एतराज की सूरत में ये सवाल करें, ये क्या बात हुई, ये कौन सी मिसालें हैं देने वाली, भला इससे क्या मतलब हो सकता। और आज हमारे मुसलमानों में बाज लोग ऐसे हैं जो इस तरह के एतराजात अपने ही दीन पे करते हैं। ऐसी चीजों को वैसे शेयर नहीं करना चाहिए आगे जिनमें इस किस्म की बातें हो। अगर एक दफा मैंने देखा था किसी का क्लिप के कोई प्रोफेसर था, और वो इसी तरह स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं ना, कि वो जन्नत की बातों का, जन्नत की नियमतों का इतना मजाक कर रहा था, और ऐसे कह रहा था वो कौन सा खुदा है जिसने ऐसे किया है, और ये मुसलमान, ये कोई मैं किसी गैर मुस्लिम की नहीं बात कर, वो कौन सा खुदा है जिसने दूध की नहरें बहाई, भला वहां पे कोई भैंसे हैं, वहां पे कोई ये है, दूध ही चाहिए रह गया था इंसानों को। इतनी हकारत वाली बातें। तो यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका अल्लाह की आयात को पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि हम इनसे हिदायत लें, उनका मकसद क्या होता है, हम देखें ना सही इसमें है क्या, जरा जरा पता तो चले, बड़ी तारीफें करते हैं, देखो जरा ये क्या बात लिखी हुई, हाँ देखो जरा ये क्या हुक्म हुआ, लो देखो जरा ये कोई चीजें आज चल सकती हैं, ये कहाँ की जमाने की बातें की हुई है इसमें। जब इस किस्म के रवैये के साथ कोई कुराने करीम की तरफ आएगा तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, युदिल्लु बिही कतीरा। अल्लाह अकबर, आप सोचिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये बात कहते युदिल्लु बिही कतीरा, अल्लाह ताला फिर इसी कुरान के साथ उसको भटका देता है, अल्लाह भटका देता है। वो पढ़ क्या रहा है, कुरान अल्लाह की आयतें, और उसके साथ होता क्या है, वो भटक जाता है। कुरान से भी कोई भटकता है, आप सोच रहे होंगे ऐसा भी कभी होता है कोई कुरान से भटक जाए, जी हाँ कुरान से भी लोग भटकते हैं। जब अंदर गंदा होता है, जब अंदर बीमारी लेकर इंसान कुरान सुनता है और पढ़ता है, और इसके ऊपर मजाक करने के लिए, इसके ऊपर इतराजात करने के लिए, इसमें कि देखूं तो सही जरा, एक होता है देखता हूं मैं कि इसमें क्या है, ये है एक ये रवैया के मैं जानना चाहता हूं, और एक है देखूं तो सही, समझ आई, दोनों देखूं मैं, इसी से आपको पता चल गया होगा ना, ये कई इस रवैये के साथ आते हैं और कई उस रवैये के साथ आते हैं। तो जो फिर कहता है ना देखूं कि क्या कहा है अल्लाह ने, वो फिर क्या है, वह यहदी बिही कतीरा, इसी कुरान के साथ वो हिदायत पाते हैं। इसीलिए ये कहने की जरूरत नहीं होती, लोग बड़े कुरान पढ़ लिए इन्होंने, ये बदले नहीं, ये ऐसे हुआ, बदले ये कैसे, क्योंकि इसी कुरान से युदिल्लु बिही कतीरा भी है। जरूरी नहीं हर कोई कुरान सुन के पढ़ के तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, हिदायत पा जाए, अल्लाह ने तो शुरू में ही बता दिया आपको कि भटक भी जाते हैं लोग, क्योंकि लोगों की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है वो किस नीयत के साथ इस कुरान की तरफ आए। जब मैं इस कुरान को खोल के बैठती हूं तो मैं क्या सोच के बैठती हूं, मैं क्या पढ़ने जा रही, हजरत इकरमा की तरह ये मेरे रब का कलाम है ये सोच के, या अच्छा चलो देखते तो हैं, सुना है बड़ी बातें हैं इसके अंदर, बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी सारे बताएं तो चलो देखूं तो सही, ना ये रवैया। आपको वही मिलेगा जिस नियत के साथ आप इस कुरान की तरफ आएंगे, सबको वही मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था अपनी नियतों के जायजे लें, क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपको वही देगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर शोशे निकालने के लिए आना चाहते तो कोई शोशे भी मिल जाते हैं लोगों को, मिल जाते हैं। देखें आप इन्हीं में से लोगों ने कहा अल्लाह ने ये क्यों मिसाल दी है, अल्लाह ने ऐसे क्यों कह दिया, और आज भी आप देखते हैं बहुत लोग शोशे निकालते हैं, कभी हुरों के मजाक हो रहे हैं, कभी और चीजों के मजाक हो रहे हैं, कभी जहन्नुम के ऊपर यहीं से लेके लतीफे बनाए जा रहे हैं, कभी एतराजात हो रहे हैं। तो फिर भटकेंगे ना इसी से, उनका पढ़ना ही इसलिए। तो जो जिस नियत से पढ़ेगा उसको वो मिलेगा। आज फिर दोबारा देखें मैं किस नियत से पढ़ना चाहती हूँ, किस नियत से, बहुत सारी नियतें कर ली। मैं अपने लिए भी हिदायत चाहती हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए भी, अपने घर में भी दीन का इल्म जिंदा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हम सारी फैमिली हिदायत पे चले, सिराते मुस्तकीम पालें, मैं अल्लाह के हुक्म जान के उनके ऊपर अमल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरे रब ने मेरे साथ क्या बात की है मैं वो जानूं, मैं चाहती हूँ कि अमल में मैं दौड़ लगाऊं, मैं चाहती हूँ नेकियों में मैं भागूं, मैं चाहती हूँ मैं अल्लाह को राजी कर लूं। बहुत सारी नियतें कर ले, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा इस कुरान से। और कोई ये भी चाहेगा मैं चाहती हूँ मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए फिर मैं जाके कहीं जॉब वगैरह कर लूं, तो ये भी मिल जाएगा। जिस जो जो चाहेगा ना वो ही मिलेगा। तो आप अपनी चाहते अपनी नियतें बहुत ऊपर बहुत बुलंद रखें, बाकी चीजें तो मिल ही जानी है, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सवाब भी मिल जाना है इंशाल्लाह बैठने का, लेकिन जब आप एम्स हाई रखेंगे ना बड़ा कुछ मिलेगा, बरकतें भी मिलेंगी, रहमतें भी मिलेंगी, अल्लाह की रजा भी मिलेगी, जन्नत का आसान रास्ता भी मिल जाएगा, जन्नत के रास्ते खुलते चले जाएंगे, नेकियों के रास्ते खुलेंगे। तो क्या चाहते हैं हम, सबका आपका होमवर्क है, इसमें अमल की बात है। अमल की बात हमारे लिए क्या है, हम देखें हम किस नियत के साथ कुरान को खोलते हैं। जब हम क्लास में बैठते हैं सीखने के लिए बैठते हैं तो हमारी क्या नियत होती। तो आयतों में अमल की बातें जरूर ढूंढा करें, बाज मैं आपको बताऊंगी बाज आपने खुद तलाश करनी है, वरना अगर अमल की बात कोई नहीं है हमारे लिए तो फिर सिर्फ पढ़ना और रटे लगाना ही रह जाता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता किसी को ये मिसालें मगर फासिकीन को, यानी सिर्फ फासिकों को गुमराह करती है, क्योंकि इंसान डर जाता है ना अल्लाह कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं इस कुरान को पढ़ के। तो अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, सिर्फ फासिक गुमराह होते हैं, उसी और को ये गुमराह नहीं करता। बी ही, अच्छा ही की जमीर किस तरह जा रही है, युदिल्लु बी ही कतीरा व यहदी बी ही कतीरा, बी ही क्या है, साथ इसके, इसके किसके, इस कुरान के, नंबर टू इन मिसालों के, ठीक है, इन मिसालों के जरिए कोई और नहीं गुमराह होता मगर फासिक, या इन मिसालों से बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे हिदायत भी पा जाते हैं। कैसे हिदायत पाई उन्होंने, या अलमूना अन्नहुल हक को मेरा भाई, वो जानते हैं यह हक है हमारे रब की तरफ, यह अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ कलाम है, ठीक है, और कुरान से, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया कुरान से कैसे हिदायत पाते हैं कैसे गुमराह होते हैं। तो फासिक कौन होता है, नाफरमान को फासिक कहते हैं, जो दीन के दायरे से निकल जाए इताअत से निकल जाए वो फासिक है, हदों को तोड़ता है वो फासिक है। अब फासिक की कुछ डिटेल भी आगे बताई गई, कौन होते हैं फासिक, अल्लदीना वो लोग, यंकुदूना जो तोड़ते हैं, नकदा कहते हैं तोड़ने को, पिरा को खोलने को, अहदल्लाह अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीथाकही उसको पक्का करने के बाद। अल्लाह के अहद से क्या मुराद है जिसको ये लोग तोड़ते हैं, इनकी यहाँ पे तीन सिफात बताई गई फासिकीन की। पहली सिफत क्या है, अहद को तोड़ते हैं पक्का करने के बाद, तो कौन सा अहद, कोई आपने और मैंने कोई अहद किया हुआ अल्लाह के साथ? पहले तो हम देखें ना अपने आप को, कोई अहद है? ये एक मुराद इससे है अहदे अलस्त। अहदे अलस्त कौन सा है आपको पता है? अहदे अलस्त का कि अल्लाह ताला के साथ एक अहद आप कर चुके हैं। वो कब किया था? जब हम आलमे अरवाह में थे, अल्लाह ने हमारी रूहें बनाई सब की, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में आना है, सब की रूहें बना के अल्लाह ने उन रूहों को अपने सामने खड़ा किया और उनसे एक अहद लिया और एक सवाल पूछा, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने जवाब दिया था, चाहे वो अबू जहल की है, चाहे वो फिरौन की है, चाहे वो अबू लहब की है, चाहे वो नमरूद की, सब ने एक जवाब दिया, भला क्यों नहीं, ला आप ही हमारे रब है। तो अल्लाह ताला के साथ एनकाउंटर इस रूह का हो चुका है पहले, अल्लाह ताला के साथ कलाम कर चुकी हैं ये रूहें पहले, तभी तो रूह के अंदर प्यास है ना अल्लाह की, तभी तो ये अल्लाह ताला को तलब करती है, चाहती है। आगे हम और बात करेंगे। तो खैर यहां तक ये बात समझे कि वो एक अहदे अलस था जो इंसान ने किया था। जब दुनिया में आता है तो इसको रिमाइंडर्स के लिए अल्लाह ताला पैगंबर भेजते हैं, क्योंकि हम कहेंगे लो हमें क्या याद है वो अहदे अलस्त कौन सा था, मुझे तो याद ही नहीं। तो आपको याद है कि आपकी माँ ने ही आपको जन्म दिया था और उसने ही आपको पाला था, याद है आपको कुछ? हाँ, क्या आप पैदा हुई थी, आप इसी माँ के घर पैदा हुई थी? नहीं याद ना, फिर आपको कैसे पता? नहीं, सबने मुझे बताया है, ये सभी बताते हैं कि यही तुम्हारी माँ है, तो फिर इसलिए मुझे पता है। लेकिन आपको याद तो नहीं ना, फिर भी आप मानते हैं, तो आपको याद नहीं भी है अहदे अलस्त, लेकिन पैगंबरों ने आके बताया ये आपने एक अहद लिया, ठीक है? तो वो अहद लेकर उसके बाद दुनिया में आके भूल गए, अल्लाह को ही भूल गए, उसको रब ही नहीं मानते, तो तोड़ दिया ना अहद पक्का करने के बाद। खुद जवाब दिए थे कि हाँ अल्लाह तू हमारा रब है, कोई पर्पज ही था ना इस अहद का, तो अब आके कुछ याद ही नहीं, अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह के अहकामात को भुला दिया, उसका इनकार ही कर दिया, वो खुदा है ही नहीं, हुक्मों को क्या मानना है, ठीक है? तो एक तो ये अहद, उसके बाद हमने और कोई अहद किया है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, ये भी एक अहद है, ये भी आपने एक वादा अल्लाह से कर लिया कि अल्लाह से तेरे सिवा तो किसी को हम इला समझते ही नहीं, कोई इला है ही नहीं। जब आपने इला मान लिया तो उसको सबसे बड़ा मान लिया, फिर आप उसकी माननी है, लेकिन आप इस अहद को तोड़ते हैं, इस वक्त उसकी नहीं मानते, तो ये भी अहद को तोड़ना है। फिर ये अहद को मैंने आपको कहा ना गिरा खोलना, गिरा रस्सी से लगाई जाती है, गिरा गांठ लगाई जाती है, को गांठ को खोलते हैं, वो भी होता है नकादा। तो यहाँ पे कहा गया उस गांठ को खोल दिया जबकि वो मजबूत जोड़ी गई थी, तो ये रस्सी कौन सी है? ये है कुरान, इसको अल्लाह की रस्सी कहा गया, इसको तोड़ देते खोल देते हैं जबकि मजबूत बांधा गया, यानी बड़ी एफर्ट के साथ खोलते हैं, यानी क्या मतलब अल्लाह से ताल्लुक तोड़ देते हैं, क्योंकि ये रस्सी के जरिए अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से नीचे लटकाई गई है, जब इसको थाम लेते हैं तो इसका एक सिरा इंसान के हाथ में, एक अल्लाह के हाथ में, इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है इसके जरिए। अब जब इसको ही तोड़ दिया तो खत्म हो गया रिलेशनशिप, समझ आई आपके कौन कौन से अहद तोड़ते हैं? तो कुरान से दूरी, कुरान को ना इसकी तरफ आना, ना इसके जरिए अल्लाह से ताल्लुक रखना, इस रस्सी को पकड़ना ही नहीं, अल्लाह से ताल्लुक तोड़ना है, ये बस अल्लाह के अहद को तोड़ देना है। आज देखें कितनी दुनिया अल्लाह के अहद को तोड़े हुए है ना, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि अल्लाह के साथ अहद भी कोई है हमारा और उसके साथ ताल्लुक है कोई हमारा, या हमने कोई अहदे अलस्त लिया था। وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ, और वो काटते हैं किस चीज को, मैं अमर अल्लाह, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, क्या हुक्म दिया अल्लाह ने, बी साथ इसके क्या, अयु सला के जोड़ा जाए उसको, वो उसको तोड़ते, अल्लाह ने कहा किसी चीज को के लिए हुक्म दिया कि इसको जोड़ो, वो उसको तोड़ते हैं। यहाँ पे क्या मुराद है कि अल्लाह ने हुक्म दिया किसी चीज को जोड़ने का, तो अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला किस चीज को जोड़ने का हुक्म देता है। तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, रिश्तों को जोड़ने का। ये रिश्ते रहम के रिश्ते हैं, जो इंसान जब से पैदा होता है उसको ये रिश्ते मिलते हैं। माँ बाप का रिश्ता हो गया, बहन भाइयों का रिश्ता हो गया, खाला मामू चचा पुपी, ये सब रिश्ते हैं हमारे। इनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, ये रहम के रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते नसब से इंसान को मिलते हैं, कुछ सहर से मिलते हैं, यानी कुछ ससुराली रिश्ते होते हैं और कुछ नसब के रिश्ते होते हैं। अल्लाह ने इनको जोड़ने का हुक्म दिया हुआ, लेकिन जब इंसान इनको तोड़ता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ रहा है। अब ये रहम जो है ना, ये फिर कयामत के दिन अल्लाह से शिकायत करेगा कि ए अल्लाह, इस बंदे ने मुझे तोड़ा था, तो इसको तोड़। ये रहम शिकायत करेगा, अल्लाह ताला इसकी जो इसको जोड़ने वाला है ना, हदीस में आता है कि रहम जो इसको मिलाएगा, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उससे मिलता हूं, और जो कता ताल्लुक करता है उससे कता ताल्लुक करता है। तो एक और हदीस में आता है कि जो कतई रहमी करने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा वो। इतना ये जरूरी है रहम के रिश्तों को जोड़ना। जो ताल्लुकात अल्लाह ने रखे हैं, ये अल्लाह ने बनाए हैं रिश्ते, ये हमने खुद थोड़ी चूज किए हैं कि मैं इस खानदान में पैदा हूं, ये मेरे रिश्तेदार हूं और ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैंने नहीं इसके साथ रिश्तेदारी करनी। ऐसे नहीं है ना, जो भी आपके रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ते आपको पसंद है नहीं है, दूर के हैं करीब के हैं, सब रिश्ते हैं जिनको हम कहते हैं हमारे रिश्तेदार। कुछ करीबी होते हैं, कुछ दूर के होते हैं, सबको मिला के चलना, ये सिला रहमी है। अब आज आप देखें, और कयामत की निशानियों में से भी है ये कि जिसको कहते ना खून सफेद हो जाना, रिश्ते तोड़ेंगे लोग। तो जब इंसान अल्लाह का नाफरमान बनता है ना, अहद अल्लाह के साथ तोड़ता है, तो याद रखिए उसके रिश्तों पे भी इफेक्ट आता है। इसीलिए ना आप देखते हैं जो अल्लाह का फरमान बरबरदार है वो माँ बाप का भी फरमा बरदार होता है, वो तभी रिश्ते भी निभाता है चाहे वहां से उसको उल्टा तकलीफ ही मिल रही हो। मगर क्या चीज उसको जोड़ने पर मजबूर करती है कि नहीं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का डर है, मैं क्या करूं? तो फिर इंसान नहीं तोड़ता अल्लाह के डर की वजह से। लेकिन जब अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, उसकी पकड़ का, उसकी पूछ का ना खौफ हो, तो फिर तो इंसान रिश्तों को तोड़ता फिरता। आपको पता है पुल सिरात पे भी, जो एंड की जगह होगी जन्नत से पहले पुल सिरात पे से गुजरना, उसके ऊपर भी ये सिला रहमी खड़ी हो जाएगी। दो चीजें हैं जिनके बारे में हदीस में आता है कि दो चीजें खड़ी होंगी, अमानत और सिला रहमी। सिला रहमी ने पकड़ लेना वहां पे कि जो है ना अल्लाह, इसने मुझे तोड़ा था। अब हमें तो नहीं पसंद आते अपने रिश्तेदार, तो क्या करें? तोड़ दे उनके साथ, नहीं तोड़ सकते हम। दोस्तों के साथ खत्म करके कोई और नए दोस्त बना सकते हैं, उसमें नहीं हमें कहा गया कि दोस्तों के साथ आपने नहीं तोड़नी, दोस्तों को आपने दोस्त ही रखना है, जो एक दफा दोस्त बन गया सारी जिंदगी के लिए दोस्त है ना, ऐसे नहीं हमें कहा गया। दोस्त आप चूज कर सकते हैं अपने, आप अपने कंपनी चूज कर सकते हैं। अगर पहले बुरी कंपनी है तो उससे अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन रिश्तेदार, ये ना तो हम इनको चूज कर सकते हैं, ना इनको छोड़ सकते हैं, ना इनको बदल सकते हैं, इनको तो निभाना ही निभाना है। ना ही ऐसी नाराजगियां कर सकते हैं कि बहन बहन से और भाई भाई से साल साल से बातचीत नहीं की, मिले ही नहीं, माँ बेटे से कह दे मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, माँ बाप बच्चों से कह दे तुम हमारे मरे मुंह ना देखना, हम बच्चों को आग करते हैं, फलां बेटी को आग कर दिया, बेटे को आग कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। खाला मामू चचा पुपी दादी नानी, ये सब रिश्ते हैं, इन इनको निभाना ही है, ये नहीं कर सकते एक दूसरे की सूरतें ही ना देखें, इनको काट नहीं सकते, ये दोस्तियां नहीं है, ये छोड़ी और दूसरी कर ली। लेकिन जब इंसान रिश्ते तोड़ता है तो फिर सिवाय फसाद के और कुछ नहीं होता, फिर वो फासिकीन में है जिनको हिदायत नहीं मिलती। फिर जब दोस्त माँ बाप से ज्यादा प्यारे हो जाए, जब बहन भाइयों से बात किए हुए जमाना गुजर जाए, जब गलत फहमियां आपस में दिलों में इतनी हो जाएं कि दिल खराब हो चुकी है एक दूसरे से, जब गिले शिकवे इतने हैं कि लिस्ट ही खत्म नहीं होती। आप छेड़ के तो देखें किसी को, जहां पे नहीं किसी की बनती अपने किसी रिश्तेदारों से, फिर छेड़ के देखें, वो तो आपके गले पड़ जाएंगे। आप कौन होते हैं हमें कहने वाले, आपको क्या पता उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। तो क्या क्या किया है, तो जो भी किया है अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल लदीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, तुम पे सिर्फ तुम्हारी ही है पूछ, तुम्हारा अपने नफ्स की बात है। ला यदुर्रुकुम, नहीं तुम्हें कोई नुकसान देगा, मन दल, अगर कोई कोई गुमराह होता है किस शर्त पे, इज़ाहतदई तुम, अगर तुम हिदायत करो, अगर तुम सही रास्ते पर हो ना, कोई गलत कर रहा है, कोई वो ऐसे करता है, फुलाने ने ऐसे किया, उन्होंने भी तो ऐसे किया, उनकी जो गलत चीजें हैं, उनके जो गुनाह हैं, उनकी जो गुमराही है, उनकी जो गलत आपके साथ रवैये हैं, वो आपको कुछ नुकसान नहीं देंगे अगर आप सीधे चलने वाले हो। लेकिन अगर आपने उनको देखा देखी उनके जैसे ही चीजें करनी शुरू कर दी, तो फिर आपका भी नुकसान। जब ये गुंजाइश नहीं रहती ना दूसरों के कसूर माफ करने की, कि मैंने नहीं माफ करना, बस जो मर्जी हो जाए मैं नहीं माफ करूंगी, जब आप मूव ऑन नहीं होते, छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठ जाते, वो उस वक्त नहीं आए थे, उन्होंने मेरी दावत नहीं कबूल की, वो तो फलाने वक्त में मैंने उसको फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया, उसने मेरे मुझे पूछा नहीं, मैं बीमार थी, उसने ऐसा नहीं किया, वो तो ये वक्त था हमारे ऊपर, वो नहीं हमें देखने के लिए आए, अब हमें भी नहीं उनकी जरूरत है। तो याद रखें एक बात, समझ लें, रिश्ते हमने इसलिए नहीं निभाने कि हमें जरूरत है तो फिर हम रिश्ते निभाएंगे। हमने रिश्ते क्यों निभाने हैं, कि वो अल्लाह का हुक्म है, ओ भाई आपकी जरूरत है या नहीं है इसको छोड़ो। आज हम क्या कहते हैं, मैं कोई उनसे लेके खाती हूँ, मुझे क्या मुसीबत है उनसे रखने की, नहीं बात करते तो ना करें, हमें भी नहीं कोई उनकी परवाह, नहीं हमसे मिलते तो ना मिले, हम भी नहीं उनसे मिलते, हम लेके खाते हैं उनका, तो ये बात नहीं होती लेके खाते कि नहीं खाते। आज असल में हम सब इतने इंडिपेंडेंट हो गए, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, उसको किसी की, जाहिर है ऐसे तो जरूरत नहीं है, कम ही होता है कि किसी को बहुत ही किसी की जरूरत हो जाए, लेकिन अपनी जरूरत के लिए फिर दूसरों के पैर भी पड़ जाते हैं, उनकी चापलूसियां भी करते हैं, उनके आगे पीछे भी फिरते हैं, उनकी खुशामदें भी होती हैं जहां पे आप देखते हैं जरूरत होती है रिश्तों में। लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि मेरा हुक्म है, तो तब कहते हैं नहीं हमसे नहीं होता, हम इनका लेके खाते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। जब ये रिश्तेदारियां गले के फंदे बन जाए ना, कि ये तो हाय मुसीबत है रिश्तेदारी, जब ये सोचो कि मेरी तरफ से नाराज होते हैं तो होते रहें, मुझे नहीं परवाह, तो फिर फसाद निकलेगा। जब शादी के बाद शोहर कहने लगे आज से तुम्हारा भाई इस घर में ना घुसे, खबरदार तुम अपनी बहन से मिली, खबरदार अपने मां बाप से मिली, तो ये क्या है, रिश्ते तोड़ने हो गए। बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से है खता रहमी, छोटा गुनाह नहीं है। माँ बाप बच्चों से काट रहे हैं, बच्चे माँ बाप को उठा के फेंक के आ रहे हैं, कहीं बहन भाइयों के अंदर सही नहीं है। जब ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से मियां बीवी के दरमियान जुदाई कराई जाए, ये क्यों आपस में एक दूसरे से इतना करते हैं, मेरा बेटा क्यों अपनी बीवी को इतना पूछता है, ये क्यों इसके इतने आगे पीछे घूम रहा है, तो तब फसाद ही होगा जब रिश्ते टूटेंगे। बहुत ये फार फ्लंग इफेक्ट होते हैं इसके, छोटे नहीं होते, ये कुछ ऐसी मामूली बात नहीं है। जब औरत ये सोचने लगे मैंने अब अपने मियाँ को जरा दूर करना है, ये क्यों अपने बहन भाइयों से इतना मिलता है, ये क्यों अपने माँ बाप को इतना पूछता है, तो फसाद होगा। इनमें हिकमतें हैं, इन अहकामात में हमारे लिए। आपको नहीं पसंद आती चाय, चाय आपके लिए कड़वा घूंट है, पियो इसको, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है बस, और इस सोच के साथ कि इसमें खैर है, बस इसमें खैर है, और ये अल्लाह का हुक्म है तो इसमें खैर ही खैर है। अब मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं, मेरी अकल की कमी होगी। हम क्या करते हैं, वो तो मिलना ही नहीं हमसे चाहते, तो आप मिल लें, आप मिल लें, आप अपनी तरफ से अपना काम पूरा करते जाएं। दूसरा कोई भी करता है वो अल्लाह के हाँ अपना जवाब दे, आप नहीं उसके लिए जवाब दे, उसका गुनाह उसके ऊपर है, कोई माफ नहीं कर रहा, उसका गुनाह उसके ऊपर है। इस इन चीजों में अना बहुत ज्यादा आती है, मैं क्यों, मैं ही क्यों करूं, उनके पास फोन नहीं है, वो नहीं फोन कर सकते, मैं ही क्यों, हर दफा मैं ही करती रहूं, मैं कोई इतनी पागल हूं। ये अना जो है ना, ये हमारा एक काम खराब करती है, और आप देखेंगे यही शैतान में थी, मैं क्यों। तो रिश्तों में ये मैं बहुत आती है, हमें ये देखना है कि हम अपने रिश्तेदारियों को कितना निभाने वाले हैं। रिश्तेदारों के अंदर मैं नहीं कहती कि सारे ही बहुत अच्छे नेक सिफात वाले रिश्तेदार होंगे, कई बड़े कड़वे रिश्ते भी होते हैं, कई ऐसे रिश्ते होते हैं इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है उनके साथ चलना, जहां पे आप उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं वहीं पे ही वो कुछ ना कुछ सुना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बस सिर्फ अल्लाह की खातिर वहां पे सबर करना है, वो सबर भी चीज होती है ना। और जितना कोई रिश्ता क्लोज होता है उतना ही उसका हक ज्यादा है, उतना ही उसका निभाना ज्यादा है, जितना दूर का होगा उतना ही जाहिर है उतने हकूक तो नहीं होंगे जितने करीबी वाले के होंगे। तो क्या करेंगे जब रिश्तों को जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ना, कैसे है, हमने कि रस्सी तो है नहीं कि हम पकड़ के उसको गिरा लगा दें। एक हदीस पहले आपको बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तेदारी अर्श के साथ लटकी हुई है, कहती है जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह तू उसे जोड़ देगा, और जिसने मुझे तोड़ा अल्लाह इससे दूर होगा। ठीक है, तो अब कैसे जोड़ेंगे रिश्तों को, उनके ऊपर खर्च करके, उससे भी दिल नरम होते हैं तोहफे तहाइफ देने से, फिर उनके दुख सुख में शरीक हो जाने से, दुख सुख का पता रखेंगे तो शरीक होंगे ना, या दुख सुख के अंदर उनके साथ यानी इजहारे हमदर्दी करना या उनको तसल्ली देना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। कोई जरूरी नहीं होता कि फाइनेंशियली किसी को हेल्प चाहिए हो, कभी कभी आपका वहां पे मौजूद हो जाना, या आप दूर बैठे हुए तो आपका फोन कर लेना भी एक रिश्तेदारी निभाना। फिर इनसे हसद ना करना, कीना ना रखना, ट्रस्ट करना, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना कि कोई नहीं, अच्छा गुमान रखना कि अच्छा उसने ऐसे कहा, हो सकता है पता नहीं आज उसका नहीं उसका दिल चाह रहा होगा, हो सकता है आज उसकी तबीयत ना सही हो सकता है कि आज उसके कोई ऐसा मामला उसके साथ हो गया हो घर में, तुमको पता नहीं क्या किसी की परेशानी हो सकती है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिए कभी। दरगुजर करना, दरगुजर जाने दिया करें, चीजों को छोड़ भी तो देते हैं ना, पकड़ के नहीं बैठ सकते, याद है मुझे, मुझे नहीं भूलता ये, ओ भाई आपको सबक तो भूल जाता है ये, लेकिन बातें कभी नहीं भूलती, भूल जाए उनको, अब सबक को याद करते हैं ज्यादा करेंगे ना तो फिर ये चीजें जरा भूल भी जाएंगी, सबक की तरह तवज्जो कम होगी तो इन्हीं चीजों को फिर खोलते रहेंगे रोजाना। तो ये एक चीज है कि इंसान फॉरगेट करने की कोशिश करें, और जितना रिपीट करेंगे फॉरगेट नहीं हो सकेगा। और फिर इसमें एक्सपेक्टेशन ना रखें, कोई अच्छा करता है ठीक है, नहीं अच्छा करता तो तब भी हम तो अल्लाह की खातिर कर रहे हैं बस, ठीक है। अब आपने उनको बहुत कीमती तोहफे दिए, उन्होंने तो आगे से कुछ भी ना किया, शुक्रिया तक नहीं कहते, तो आप कहते हैं ये क्या बात हुई, ऐसे जो लोग हैं उनके साथ तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, इनको तो कभी देना ही नहीं चाहिए, और अक्सर ऐसा होता है। दूसरी तरफ से कोई मेंशन आता ही नहीं, यानी बदले के तौर पर तो क्या करना, कोई शुक्रिया तक भी नहीं होता, बल्कि ये ही नहीं होता कि आपने कोई चीज दी हमें, आप मसलन किसी को भिजवाते हैं तोहफा, उसने आगे से नाम भी नहीं लिया, ऐसा लगता है पहुंचा ही नहीं उसको, तो फिर क्या करना, सब्र कर लेना उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें करेंगे तो रिश्तेदारियां निभेंगी, ऐसा कम ही होता है, कम ही कहीं होता है कि जितना आप किसी के साथ कर रहे हो उतना ही आपको रिटर्न में भी मिले, ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर ऐसा नहीं होता और नहीं होगा, तो इसको एक्सेप्ट करें कि हमने इसी तरह बस चलना है। ये ना सोचें कि कब ये ठीक होंगे, ये ठीक हो तो वो ठीक हो गए, वो अच्छे हो गए, तो आपका क्या कमाल रह गया फिर? आप कहाँ के अच्छे रहे फिर? अच्छे तो आप तब हैं जब वो बुरा भी है तो तब भी आप अच्छे हैं, तब आप अच्छे कहलाएंगे। और दूसरा जो है बुरा हो गया तो आप भी बुरे हो गए, दूसरा अच्छा हो गया तो आप भी अच्छे हो गए, तो आपका तो अपना कुछ है ही नहीं है फिर। तो हमें क्या करना है फिर? जिंदगी में इन चीजों को लेके चलना है, इन्हीं के साथ जीना है, क्योंकि रिश्ते सबके हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो अकेला ही पैदा हुआ, कोई उसके ना कोई माँ बाप है ना कोई भी नहीं है, या कोई ऐसा इंसान भी कोई कम ही होगा जिसके सारे ही परफेक्ट और बेस्ट हैं। ये भी मुश्किल ही होता है, कहीं ना कोई कोई ना कोई जरूर ऐसा होता है जो जब उसके मिलेंगे वो कुछ सुना देगा, कोई बात ऐसी कर देगा कि आपका दिल खराब हो जाए। फिर भी बस आपने सबर करके और बस निभाते ही रहना, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखते हैं। एक तो इसके ऊपर बात हो गई, तो पहला भी आपको समझ आ गया कि अहद तोड़ना क्या है, अल्लाह के साथ ताल्लुक काट देना। दूसरा, वो अपने रिश्ते नहीं निभाते। तीसरा, वो फसाद करते हैं जमीन में। फसाद क्या होता है? जो भी कोशिश अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में नहीं, जो भी कोशिश ऐसी हो जिसमें कोई अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ रहे हैं लेकिन उसमें रुकावटें डालना, रोड़े अटकाना, तो ये फसाद पैदा करता है। गुनाह जो है ये भी फसाद है, शिर्क भी फसाद है, रिश्तों को तोड़ना भी फसाद है, ये सब फसाद के काम है, ठीक है? अब जब ये फसाद होता है ना, तो ये इसके बड़े बुरे इफेक्ट होते हैं दुनिया में। जब भी जाहिर है अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं होगी, गुनाह होंगे, तो आज आप देखें उन्हीं का नतीजा है कि घर घर बेचैनी, घर घर परेशानी, लोगों का आपस में कोई सलूक नहीं है, मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, नफसा नफसी पड़ गई है। और फिर और भी आप देखें हिस्सी तौर पे भी फसाद क्या है, मसलन कत्ल व गारत है, ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब फसाद की किस्में हैं। जब गुनाह होते हैं जमीन पे तो ये चीजें आती हैं। खालिस चीज कोई नहीं मिलती, धोखा दही है, झूठ है, सब फसाद है। तो युफसिदूना फिल अर्द, वो जमीन पे फसाद करते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही है खसारा पाने वाले। खसारा जो है ना, ऐसे हम उर्दू में खसारा बोलते हैं, उसको खसारा हो गया, नुकसान हो गया। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। खसारा उस नुकसान को कहते हैं जिसमें इंसान की इन्वेस्टमेंट भी चली जाए। मसलन है किसी ने 6,000 लगाए, इन्वेस्ट किए, उसको उम्मीद थी कि उसके ऊपर 4,000 का प्रॉफिट भी आएगा। प्रॉफिट तो आया, क्या आना था, प्रॉफिट तो आया नहीं, वो जो 6,000 लगाए थे वो भी डूब गए, बिल्कुल खाली हाथ हो गया। इसको कहते हैं खसारा, ठीक है? तो खसारे का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, नहीं, खसारे का मतलब ये कि उसकी जो जो इन्वेस्टमेंट थी, जो उसने लगाया था, वो भी सारा जमा पूंजी उसकी डूब गई, वो खाली हाथ रह गया, ये है खसारा। तो ये हुमुल खासिरून, यही तो है वो जो खसारा पाने वाले हैं। यानी इनका खसारा क्या होगा? क्या ऐसे लोगों को बिजनेस में लॉस हो जाएगा? या क्या होगा इनको? इनका खसारा ये होगा कि कयामत के दिन ये अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएंगे, ये इनका खसारा है, कुछ नहीं इनको मिलेगा। सवाब तो छोड़, और उल्टा जहन्नुम का ईंधन बनेंगे।